ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே ஹரே, ஹரே ராம் 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 ஹரே ஹரே. ஸ்ரீமத் பாகவதம் தீஸ்ரா ஸ்கந்த் அத்தியாய 14 ஸ்லோக் சங்கியா 20 से प्रारंभ करके 30 तक पढ़ने का प्रयास करेंगे. इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति.
आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय तत्थाम वृन्दावनम् रम्याकाचिदुपासना व्रजवधू வர்க்கினயா கல்பிதா ஸ்ரீமத் பாகவதம் ப்ரமாணமமாலம் ப்ரேம புமர்த்தோமா ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு மதமிதம் தத்ராதரோ நாபர வன்ஷி விபூஷிதகரா நவநீரதாபா பீதாம்பர தருணபிம்பஃபல தரோஷ்டா பூரணேந்து சுந்தர முகாத் ஹரவிந்த நித்ரா கிருஷ்ணாத் பரம் கிமபி தத்வ அஹம் ஜானி. நாராயணம் நமஸ்கிருத்ய நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வ்யாசம் ததோ ஜய முதீரயேத். நஷ்ட ப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவயா பகவதி உத்தம ஸ்லோகே பக்திரபவதி நைஷ்டிகே. பஞ்ச தத்வாத்மகம் க்ருஷ்ணம் பக்த ரூப ஸ்வரூபகம் பக்தாவதார பக்தாக்யம் நமாமி பக்த சக்திகம். ஜெய ஸ்ரீ க்ருஷ்ண சைதன்ய பிரபு நித்ய நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதர ஸ்ரீவாசதி கௌர பக்த விருந்தா. ஹரி கிருஷ்ண 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 ஹரி ஹரி, ஹரி ராம ஹரி ராம 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 ஹரி ஹரி.
ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय. तीसरा स्कंद अध्याय 14 जिसका शीर्षक है संध्या समय दीति का गर्भधारण. श्लोक संख्या 20 से प्रारंभ करेंगे. इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए. मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे हैं कि जब दिति ने अपनी इस कामिच्छा के विषय में कश्यप मुनि को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया तो कश्यप मुनि अपनी पत्नी को इस तरह से प्रेम से समझा रहे थे. क्षमा कीजिएगा, श्लोक नंबर 20 हमने कल पढ़ लिया था, आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे।
न वयम् प्रभवस्ताम् त्वाम् अनुकृतम् गृहेश्वरी अप्यायुष्या वाकासे।
क्षमा,
न वयम् प्रभवस्ताम् त्वाम् अनुकर्तुम् गृहेश्वरी अप्यायुषा वाकास्येन ये चान्ये गुणगृह्णव।
न वयम् प्रभवस्ताम् त्वाम्, न मन कभी नहीं, वयम मन हम, प्रभव समर्थ है, ताम उस, त्वाम यानी तुमको, अनुकर्तुम वही करने के लिए, गृह ईश्वरी हे घर की रानी। कश्यप मुनि अपनी पत्नी दिति से कह रहे हैं कि आप तो मेरे घर की रानी हो और आपने तो मेरे लिए इतना कुछ किया है जिसका कर्जा चुकाने के लिए मैं तो समर्थ नहीं हूँ। और अप्यायुषा वाकास्येन, अपि उसके बावजूद, आयुषा आयु के द्वारा वा अथवा अगले जन्म में, कास्येन संपूर्ण, ये चान्ये गुण गृहीत्वा, ये मन जो, च मन भी, अन्य मन अन्य, गुण गृहीत्वा गुणों को पहचानने वाले। अनुवाद, हे घर की रानी, हम ना तो तुम्हारी तरह कार्य करने में सक्षम है, ना ही तुमने जो कुछ किया है उससे ऊऋण हो सकते हैं। चाहे हम अपने जीवन भर या मृत्यु के बाद भी कार्य करते रहें, तुमसे ऊऋण हो पाना उन लोगों के लिए भी असंभव है जो निजी गुणों के प्रशंसक होते हैं। अत्यंत सुंदर रीति से कश्यप मुनि अपने पत्नी को ये बताना चाह रहे हैं कि एक पत्नी अपने घर के लिए जितना कुछ करती है, उसका जो पति होता है वो चाहे कितना भी कार्य करे, लेकिन वो सारे कार्य करने के लिए वो सक्षम ही नहीं होता है। एक पत्नी अगर देखा जाए तो अगर वो आज्ञाकारिणी है और धर्म सम्मत है तो वो घर की हर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करती है। अपने घर को देखना, घर की सारी जिम्मेदारियों को, कितना इनकम हो रहा है उसको किस तरह से खर्च करना है, अपने बच्चों को किस तरह से अच्छे संस्कार देने हैं, अपने सास ससुर की सेवा और अपने जो ससुराल है उनके जो रीति रस्में हैं उनको निभाना, अपने जितने भी नंदे हैं और जितने भी है ना अपने पति के जितने भाई बहन हैं उनके साथ अच्छे से रहना और उनके जितने संबंधी हैं उनके साथ निभाना। हालांकि देखा जाए तो उनके साथ उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता है, लेकिन जितना माता पिता के घर में वो सेक्रीफाई नहीं करती है उससे कहीं अधिक उसको पति के घर पे ये सब बना समझौता करना पड़ता है, एडजस्टमेंट करना पड़ता है। तो यहाँ पर कश्यप मुनि बोल रहे हैं कि मैं तो आपकी तरह कार्य करने के लिए सक्षम नहीं हूँ, और जितना आपने हमारे लिए किया है उसका कर्जा भी कभी नहीं चुकाया जा सकता इस जन्म में। तो क्या मरने के बाद भी हम अगर कोशिश करें तो भी जो पत्नी होती है उसके कर्ज को नहीं चुका सकते। और यहाँ तक कह दिया जो बहुत ज्यादा गुणवान होते हैं, गुण गृध्वन यानी गुणों को पहचानने वाले होते हैं या बहुत गुणवान होते हैं, वो भी अपनी पत्नी के जो एहसान है उनको कभी नहीं चुका सकते। श्रील प्रभुपाद की जय। अब श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि पति द्वारा अपनी पत्नी का अत्यधिक गुणगान संकेत करता है कि वह स्त्री वश्य है या मजाक कर रहा है। कश्यप का आशय था कि पत्नियों के साथ रहने वाले गृहस्थ इंद्रिय भोग का स्वर्गिक आशीर्वाद भोगते हैं और साथ ही उनके पतन का भी कोई भय नहीं रहता। यहाँ श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, इतनी ज्यादा तारीफ अगर कोई करता है ना, तो या तो समझना चाहिए वो स्त्री लंपट है, या तो समझना चाहिए मजाक कर रहा है। असल में तात्पर्य ये है कि अगर जीव जो है इस भौतिक जगत में स्त्री मतलब विवाह करता है तो उसके पतन का भय नहीं रहता, क्योंकि उसको इंद्रिय तृप्ति करने के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ता है। सन्यासी के पत्नी नहीं होती, अतः कामिच्छा से वह अन्य स्त्री को या अन्य की पत्नी को ढूंढने के लिए इच्छुक हो सकता है और इस तरह वह नरक जा सकता है। दूसरे शब्दों में तथाकथित सन्यासी जिसने घर तथा पत्नी को छोड़ दिया हो नरक जाता है यदि वह जाने या अनजाने में पुनः मैथुन आनंद की चाह रखता है। इस दृष्टि से गृहस्थ सुरक्षित है, अतएव पतिवर्ग वर्ग इस जीवन में या अगले जीवन में भी पत्नियों के ऋण से उऋण नहीं हो सकता। यदि वे जीवन भर उसे चुकता करते रहें तो भी यह संभावना नहीं, किंतु सभी पति अपनी पत्नियों के सद्गुणों की सराहना नहीं कर पाते, किंतु यदि कोई इन गुणों की सराहना करने में समर्थ हो भी जाए तो भी पत्नी के ऋण से उऋण हो पाना संभव नहीं है। पति द्वारा अपनी पत्नी की ऐसी असाधारण प्रशंसा निश्चय ही परिहास की मुद्रा में है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर कोई इतनी ज्यादा अपनी पत्नी की प्रशंसा कर भी लेता है तो भी इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसने जो उसके लिए किया है। वास्तव में भक्तों, यहाँ श्री प्रभुपाद जी ये समझा रहे हैं कि काम इच्छा से जब कोई जीव कामुक हो जाता है तो वो ऐसे बताते हैं शास्त्र में कि वो निर्लज बन जाता है, न भय न लज्जा, न उसको संसार का भय रहता है न भगवान का, और न ही शर्म रहती है। तो वो कोई भी गलत कार्य करने के लिए अंदर से उसको प्रोत्साहन, क्योंकि काम जो है वो एक शत्रु है। भगवान कहते हैं जिस प्रकार से शत्रु जो है वो आपका सब कुछ लूट लेता है, उसी तरह से काम जो है वो आपका सबसे बड़ा शत्रु है और ये कभी संतुष्ट नहीं होता है। ये काम जो है वो अग्नि की तरह भड़कता रहता है और भगवान ने कहा विद्यैनम यह वैरिणम, इसको सबसे बड़ा अपना शत्रु समझो। तो जब कोई गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है तो वो बहुत सुरक्षित रहता है, और अगर उसको अपनी पत्नी के द्वारा संतुष्टि मिलती है तो फिर वो आध्यात्मिक जीवन में आगे सरलता से बढ़ सकता है। लेकिन यदि कोई तथाकथित सन्यासी भी बन जाता है और फिर भी उसके मन में यदि कोई इच्छा रह जाती है मैथुन संभोग की, तो फिर वो नरक से कभी नहीं बच सकता। तो जो स्त्री पति को नरक में जाने से बचाकर भगवत धाम ले जाने का प्रयास करती है उसके कर्ज को भला वो कैसे चुका सकता है। तो आगे कश्यप मुनि कहते हैं, तथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलं यथा मां नाति रोचन्ति मुहूर्तं प्रतिपालय। तथापि मन यद्यपि, यह संभव नहीं है। काम मतलब यह काम इच्छा एतम जैसी है, प्राज्यत्य अर्थात संतानों के लिए करवाणी अर्थात मुझे करने दे, अलम यानी बिना विलंब किए, यथा माम नाति रोचंती, यथा मना जिस तरह माम यानी मुझको, न मना नहीं अति रोचंती निंदा करे, मुहूर्तम कुछ क्षण प्रतिपालयम प्रतीक्षा करो। तो मैं तो आपकी इच्छा को पूरा करूंगा, लेकिन ये समय उचित नहीं है ना कि आपको संतान उत्पत्ति करनी है। तो संतान उत्पत्ति करने के लिए तुम्हारी काम इच्छा को मैं संतुष्ट तो करूंगा, लेकिन ये समय अच्छा नहीं है, तो कुछ क्षण के लिए प्रतीक्षा करो। अनुवाद देखिए, यद्यपि मैं तुम्हारे ऋण से उऋण नहीं हो सकता, किंतु मैं संतान उत्पन्न करने के लिए तुम्हारी काम इच्छा को तुरंत तुष्ट करूंगा, किंतु तुम केवल कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करो, जिससे अन्य लोग मेरी बात सना ना कर सके। यथा माम नाति रोशंती, यहाँ पर वो बता रहे हैं कि दूसरे लोग भी तो देखेंगे तो क्या बोलेंगे या सुनेंगे कि इतने महान ऋषि और संध्या के टाइम पर इस तरह से कार्य करते हैं, तो सब मेरी बात सना करेंगे। तो फिर कुछ क्षण के लिए आप इंतजार करो। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भले ही स्त्री वैश्य पति अपनी पत्नी से प्राप्त होने वाले सारे लाभों का ऋण चुका पाने में असमर्थ न हो, किंतु जहां तक कामेच्छा की पूर्ति द्वारा संतान उत्पन्न करने की बात है, किसी भी पति के लिए यह तनिक भी कठिन नहीं है, जब तक कि वह नितांत न पुंसक न हो। सामान्य परिस्थिति में पति के लिए यह बहुत ही आसान कार्य है। अत्यंत उत्सुक होने पर भी कश्यप ने अपने पति से कुछ क्षणों तक प्रतीक्षा करने के लिए कहा, जिससे अन्य लोग उसकी निंदा न कर सकें। वे अपनी स्थिति की व्याख्या इस प्रकार करते हैं। आगे वे कहते हैं कि देखो, ये जो संध्या का समय है ना, उस समय रुद्र जी अपने गणों के साथ घूमते हैं, और अगर हम इस समय भक्ति के अतिरिक्त कोई भी और कार्य करते ना, तो सारे भूत प्रेत मिलकर हमको दंड देते हैं। कश्यप मुनि कहते हैं, एषा घोरतमा वेला, घोराणां घोरदर्शना, चरन्ति तस्यां भूतानि, भूतेषानु चराणि ही। एषा घोरतमां वेला, एषा मना यह समय, घोरतमा सर्वाधिक भयावनी, वेला मना घड़ी है। घोराणम यानी भयावनी का, घोर दर्शन भयावनी लगने वाली, चरन्ति यस्याम भूतानि, चरन्ति मना विचरण करते हैं, यस्याम मना जिस समय, भूतानि भूत और प्रेत, भूतेशानुचरण भूतेश कहते हैं भूतों के स्वामी रुद्रगण, अनुचराणी यानी नित्य संगी, हा हा मना निसंदेह। अनुवाद, यह विशिष्ट वेला अति अशुभ है, क्योंकि इस वेले में भयावने दिखने वाले भूत तथा भूतों के स्वामी के नित्य संगी दृष्टिगोचर होते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, कश्यप अपनी पत्नी दिति से पहले ही क्षण भर के लिए प्रतीक्षा करने के लिए कह चुके थे, और अब वे आगाह करते हैं कि यदि इस विशेष वेला पर ध्यान नहीं दिया गया, तो इस वेला में अपने स्वामी रुद्र के साथ इधर उधर विचरण करने वाले भूत प्रेत अवश्य दंड देंगे। आगे कहते हैं, एतस्यां साध्वि संध्यायां भगवान भूत भावना परीतो भूत पर्षद वृषेणाटति भूतराज। एतस्यां यानी इस वेला में साध्वी
हे सती, संध्यायाम दिन तथा रात के संधि काल में संध्या समय भगवान भगवान भूत भावना यानी भूतों के हितैषी परितो यानी घिरे हुए भूत पर्षद भी भूतों के संगियों से वृषेण यानी बेल की पीठ पर अटति भ्रमण करता है भूतराट भूतों का राजा। अभी यहाँ पर शिवजी के विषय में बताते हुए वे कहते हैं कि जो संध्या का समय है इस वेला में भूतों के राजा शिवजी अपने वाहन बेल की पीठ पर बैठकर उन भूतों के साथ विचरण करते हैं जो अपने कल्याण के लिए उनका अनुगमन करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं शिवजी या रुद्र भूतों के राजा हैं। भूतगण शिवजी की इसलिए पूजा करते हैं कि धीरे धीरे वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर अग्रसर हो सके। मायावादी दार्शनिक अधिकांशतया शिवजी के पूजक होते हैं और श्रीपाद शंकराचार्य को शिवजी का अवतार मान लिया जाता है जो मायावादी दार्शनिकों को ईश्वर विहीनता यानी नास्तिकता का उपदेश देते हैं। भूतों के भौतिक शरीर नहीं होते क्योंकि वे आत्महत्या जैसे घोर पाप कर्म किए रहते हैं। मानव समाज में भूतवत पात्रों का अंतिम गंतव्य यह है कि वे भौतिक या आध्यात्मिक आत्महत्या का की शरण लें। भौतिक आत्महत्या से भौतिक शरीर की और आध्यात्मिक आत्महत्या से व्यष्टि स्वरूप की हानि होती है। मायावादी दार्शनिक अपने व्यष्टि को व्यष्टित्व को खोकर निर्विशेष आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति के अस्तित्व में लीन होना चाहते हैं। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भूत प्रेत कैसे बनते हैं, क्योंकि अगर कोई आत्महत्या करता है, भौतिक आत्महत्या करता है, तो उसे मतलब भूत का शरीर प्राप्त होता है, क्योंकि हमें एक समय मिलता है ना, एक पर्टिकुलर समय के लिए एक शरीर दिया जाता है और उस शरीर में रहकर आपको कर्म करना है। सपोज अगर किसी को 100 साल का जीवन मिला है तो उसको 100 साल तक इस जीवन में जो भी सुख और दुख हैं वो भोगने हैं, वो भोगने पड़ेंगे। अब जो शरीर आपको मिला है, जो जन्म आपको मिला है, वो आपके पिछले जन्म के प्रारब्ध के अनुसार जो जो आपने कर्म किए उनके अनुसार आपको ये शरीर, ये संबंध, ये सुख दुख, ये भी लाभ हानि जो कुछ है वो आपको मिला है। लेकिन इस जन्म में जो आपको मिल गया उसमें आप कैसे कर्म करते हो, आपका भविष्य उससे निर्माण हो रहा है। तो 100 साल तक आपको यदि इस भौतिक जगत में कष्ट सहने हैं, लेकिन कोई अगर इन कष्टों से प्रभावित होकर दुखी होकर आत्महत्या करता तो उसका भविष्य भूत जैसा बन जाता है, मतलब उसको शरीर नहीं मिलता, वो बहुत दुखी जीव होते हैं। और कुछ आध्यात्मिक आत्महत्या करते हैं, आध्यात्मिक मतलब कि यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मायावादी दार्शनिक अपने व्यष्टित्व को खोकर निर्विशेष आध्यात्मिक ब्रह्म ज्योति के अस्तित्व में लीन हो जाते। वो चाहते उनका आध्यात्मिक जीवन क्या है, जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण की सेवा करना। परंतु यदि वो कृष्ण को प्राप्त करना नहीं चाहते हैं बल्कि वो ब्रह्म ज्योति में लीन होना चाहते हैं, तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी को कहते हैं कि ब्रह्म ज्योति के अस्तित्व में लीन होना चाहते। शिव जी भूतों पर अत्यधिक कृपालु होने के कारण इस ताक में रहते हैं कि निंदित होने पर भी इन भूतों को भौतिक शरीर प्राप्त हो। वे उन्हें ऐसी स्त्रियों के गर्भ में स्थापित करते हैं जो परिस्थिति तथा काल के प्रतिबंधों की परवाह ना करके संभोगरत होती हैं। कश्यप यह बात दिति को समझा देना चाहते थे। जिससे वह कुछ क्षण प्रतीक्षा कर ले। तो श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, देखो शिव जी के शरण में आते हैं सारे भूत और शिव जी उन्हें स्वीकार करते हैं, बाकी देव देवता उनको स्वीकार नहीं करते। शिव जी परम वैष्णव है और वैष्णव जन तो ताहे कहिए जे पीर पढ़ाई जाने, तो वो जानते हैं कि अगर उन्हें शरीर ही नहीं मिलेगा तो फिर वो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कैसे करेंगे। फिर वो उनको साथ लेकर घूम रहे होते हैं कि कहीं कोई ऐसा गर्भ, ऐसी पत्नी मिल जाए, ऐसी स्त्री मिल जाए जो कि संध्या के समय संभोग करने की इच्छा से यदि वो काम इच्छा से कार्य करती है तो वो उन भी जो भूत है ना उसकी आत्मा को उसके गर्भ में स्थापित कर देते हैं। इसलिए सावधान रहना चाहिए, अगर भूत जैसे संतान को उत्पन्न नहीं करना है तो हमको अवश्य इन सब चीजों को ध्यान से समझना चाहिए। आगे कश्यप मुनि कहते हैं कि शमशान चक्रा नीलधूली धूम्रा विकीर्ण विद्यो तजटा कलाप भस्मावगुंठा मलरुक्म देहो देवस्त्री भी पश्यति देवरस्ते शमशान चक्रा नीलधूलि धूम्रा विकीर्ण विद्यो तजटा कलाप भस्मावगुंठा मलरुक्म देहो देवस्त्री भी पश्यति देवरस्ते शमशान चक्रान शमशान अर्थात शमशान भूमि, चक्र अनिल यानी भवंडर, धूल यानी धूली, धूम्र यानी धुआं, विकीर्ण विद्योत अर्थात सौंदर्य के ऊपर पूता हुआ। शिवजी जो है वो अत्यंत सुंदर हैं, परंतु वो क्या करते हैं शमशान चक्र अनिल, शमशान के अंदर जो चिता जलती है और उसके बाद जो धूल बनती है, जो राख बनती है, उसको क्या करते हैं विकीर्ण विद्योत अपने शरीर पर, अपने सौंदर्य पर उसको पूत देते हैं अर्थात मल देते हैं। जटा कलाप, जटा यानी जटाओं के गुच्छे, भस्म यानी राख, व गुंठ का मतलब है उससे ढक जाती है, उस पूरे बालों तक वो सब धूल लगा देते हैं, भस्म लगा देते हैं। और अमल यानी निष्कलंक, रुक्म लाल देह यानी शरीर, उनके शरीर तो एकदम पवित्र है, वो बिल्कुल उनका शरीर लाल रंग का है, उनके अंदर कोई अपराध नहीं है, लेकिन वो फिर भी ऐसा करके अपने शरीर को दूषित मट्टी से पूरा, धूल से पूरा भर देते हैं। और देवस्त्री भी पश्यति देवरस्ते, देव यानी देवता, त्रिभी यानी तीन आंखों वाला, पश्यति देखता है, देवर पति का छोटा भाई, ते यानी तुम्हारा। अब तुमको पता है कि वो तीन नेत्र रखता है, उसको त्रिलोचन बोलते हैं, और वो तो तुम्हारे पति का छोटा भाई है, कश्यप मुनि के छोटे भाई, अर्थात वो भी ब्रह्मा जी की संतान है। तो तुम्हें सोचना चाहिए ना कि वो यहां से गुजरेगा, या इस तरह से अपनी पत्नी को समझा रहे हैं। अनुवाद देखिए, शिव जी का शरीर लालाभ है और वह निष्कुलुष है, किंतु वे उस पर राख पोते रहते हैं। उनकी जटा शमशान भूमि की भवंडर की धूली से दूसरित रहती है। वे तुम्हारे पति के छोटे भाई हैं और वे अपने तीन नेत्रों से देखते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं शिव जी ना तो सामान्य जीव है, ना ही वे विष्णु या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कोटि में आते हैं। वे ब्रह्मा समेत किसी भी जीव से अधिक शक्तिमान है, फिर भी
वे विष्णु के समान स्तर पर नहीं हैं। चूंकि शिव जी भगवान विष्णु जैसे ही हैं, अतएव वे भूत वर्तमान तथा भविष्य देख सकते हैं। उनका एक नेत्र सूर्य के समान है, दूसरा चंद्रमा के समान तथा उनकी तीसरा नेत्र जो उनकी भावों के बीच में स्थित है अग्नि तुल्य है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बोलते शिव तत्व अत्यंत ही गूढ़ है, ना ये जीव तत्व है और ना ही ईश तत्व है। दो तत्व होते हैं, एक जीव तत्व होता है, ब्रह्मा से लेकर चिंटी तक जितने भी दूसरे जीव हैं वो जीव तत्व हैं, और ईश तत्व का मतलब होता है भगवान के जो अवतार होते हैं, अर्थात भगवान स्वयं जो अवतार लेकर आते हैं, मत्स्य, कच्छप, वारह, वामन, ये सब भगवान के ईश तत्व हैं। परंतु शिव जी जो है वो शिव तत्व अलग है, वो ना ही मतलब ब्रह्मा के समान जीव तत्व है और ना ही विष्णु के समान ईश तत्व है, वो शिव तत्व है। लेकिन फिर भी वो भगवान से बहुत ही निकट है, भगवान के परम भक्त हैं, परम वैष्णव हैं, इसलिए वो भूत भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं और उनके नेत्र जो हैं सूर्य चंद्रमा और अग्नि के समान हैं। वे अपने बीच वाले नेत्र से अग्नि उत्पन्न कर सकते हैं और वे ब्रह्मा समेत किसी भी जीव को विनष्ट कर सकते हैं। फिर भी वे ना तो किसी अच्छे घर में तड़क भड़क से रहते हैं, ना ही उनके कोई भौतिक संपत्ति है। यद्यपि वे भौतिक जगत के स्वामी हैं, वे अधिकांशतया शमशान में रहते हैं जहां शव जलाए जाते हैं, और शमशान के भवंडर की धूल ही उनका वस्त्र है। वे भौतिक कलमज से रंजित नहीं होते। कश्यप ने उन्हें अपना छोटा भाई माना, क्योंकि दिति यानी कश्यप पत्नी की सबसे छोटी बहन शिवजी को बिहाई थी। अब बहन का पति उसका भाई माना जाता है। उस सामाजिक संबंध से शिवजी कश्यप के छोटे भाई ठहरे। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि दिति की सबसे छोटी बहन सती थी, उनका विवाह शिव जी के साथ हुआ, और क्योंकि बहन का जो पति होता है वो भी भाई के जैसा होता है, तो पत्नी की बहन का जो पति होता है उसको भी भाई की तरह माना जाता है। इसलिए यहाँ पर शिव जी कहते हैं कि कश्यप मुनि कह रहे हैं कि शिव जी तो मेरे छोटे भाई के बराबर हैं। उस सामाजिक संबंध से शिव जी कश्यप के छोटे भाई ठहरे। कश्यप ने अपनी पत्नी को आगाह किया कि क्योंकि शिव जी उनको संभोग रत देख लेंगे, इसलिए यह वेला उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वो घूम रहे और वो उनके तो तीन नेत्र हैं, तो वो देखेंगे तो कितना उनको बुरा लगेगा। हो सकता है कि दिति तर्क करती कि वे किसी एकांत स्थान में संभोग करेंगे, किंतु कश्यप ने उसे स्मरण कराया कि शिव जी के तीन नेत्र हैं जो सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि कहलाते हैं, और कोई भी उनकी दृष्टि से बच नहीं सकता। जिस तरह विष्णु की दृष्टि से कोई नहीं बच सकता, यद्यपि अपराधी को पुलिस देख लेती है, किंतु कभी कभी उसे तुरंत दंड नहीं मिलता। पुलिस उसे दंड दिलाने के लिए उचित समय की प्रतीक्षा करती है। संभोग के लिए निषिद्ध वेला शिवजी द्वारा देख ली जाएगी और संभोग के लिए निषिद्ध वेला शिवजी द्वारा देख ली जाएगी और दिति भूत जैसे चरित्र वाले या ईशविहीन निर्विशेषवादी शिशु को जन्म देकर समुचित दंड प्राप्त करेगी। कश्यप ने इसे पहले ही देख लिया था, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी दीति को आगाह किया कि उसके पास तो वैसे ही भूत है। भूत कौन है? एक तो जो ईश्वर विहीन लोग होते हैं, जो ईश्वर को नहीं मानते, वो भूत है। और दूसरे जो इस संसार में आत्महत्या करते हैं, जिनको शरीर नहीं मिलता, वो भूत है। तो वो देख लेंगे ना, वो घूम रहे हैं अपने तीन नेत्रों के साथ, तो देख लेंगे, तो आपके गर्भ में भी किसी भूत प्रेत को डाल देंगे। तो इसलिए अभी सब्र करो। ये असल में शिक्षा दीति के द्वारा हमको दी जा रही है। आजकल देखा जाए तो समाज में काम वासना इतनी बढ़ गई है कि जितने भी काम वासना से पीड़ित व्यक्ति हैं, वो समय का ध्यान नहीं देते। इसलिए ये शास्त्र हमको समझाने के लिए होता है। आगे कश्यप मुनि दीति से कहते हैं, नायस्य लोके स्वजना परोवा नात्याद्रितो नोत कश्चित् विगर्हा नात्याद्रितो नेत कश्चित् विगर्ह्या वयं व्रतर्य चरणापवित्था आशास्महे जाम बत भुक्त भोगान। नायस्य लोके स्वजना परोवा नात्याद्रितो नोत कश्चित् वगर्ह्या वयं व्रतय चरणापवित्था आशास्महे जाम बत भुक्त भोगान। नायस्य लोके न मना कभी नहीं, यस्य मना जिसका, लोके मना संसार में, स्वजना परो वा, स्वजना मना अपना, परो मना पराया, वा ना तो, मतलब वो शिव जी ऐसे हैं कि इस संसार में ना उनका कोई स्वजन है ना ही कोई पराया है। नात्याद्रितो नोत कश्चित् विगर्ह्य, नात्याद्रितो न मना न अधिक, अति मना अधिक, आदृत अनुकूल, न मतलब कभी नहीं, अत कश्चित् अत मना अथवा कश्चित् मना कोई, विगर्ह्यः अर्थात अपराधी, तो उनका ना ही तो कोई अनुकूल है ना ही कोई अपराधी है। वयम व्रतैर अर्थात वयम का मतलब होता है कि हम व्रतैर यानी व्रतों के द्वारा, यत जिसके चरण यानी पांव उपविद्धाम अर्थात तिस्कृत आशस्मेह यानी सादर पूजा करते, अजाम यानी महाप्रसाद, बत निश्चय ही भुक्ति भोगान उचिष्ट भोजन। यहाँ शिवजी की महानता बताते हुए कश्यप मुनि दीति से कहते हैं, शिवजी किसी को भी अपना संबंधी नहीं मानते, फिर भी ऐसा कोई भी नहीं है जो उनसे संबंधित ना हो। वे किसी को ना तो अति अनुकूल ना ही निंदनीय मानते हैं। हम उनके उचिष्ट भोजन का की सादर पूजा करते हैं और वे जिसका तिरस्कार करते हैं उसको हम शीश झुकाकर स्वीकार करते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य में शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, कश्यप ने अपनी पत्नी को बतलाया कि चूंकि शिव जी उनके साडू लगते हैं, इसलिए उसे उनके प्रति अपराध करने के लिए प्रोत्साहन नहीं होना चाहिए। मतलब वो उनकी पत्नी की बहन के पति हैं, तो उनका ख्याल रखना चाहिए, उनका कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए कि वो आए और वो इस तरह से काम इच्छा को पूरा कर रहे हो। तो कश्यप ने उसे आगाह किया कि वस्तुतः शिव जी ना तो किसी से संबंधित हैं, ना ही कोई उनका शत्रु है, क्योंकि वे ब्रह्मांड के मामलों के तीन नियंत्रकों में से एक हैं। अतएव वे हर एक पर समदृष्टि रखते हैं, उनकी महानता
अतुलनीय है क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के महान भक्त हैं। कहा जाता है कि भगवान के समस्त भक्तों में शिव जी महानतम हैं। इसे उनके द्वारा छोड़ा गया भोज्य पदार्थ अन्य भक्तों द्वारा महाप्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। भगवान कृष्ण को अर्पित भोजन का उचिष्ट प्रसाद कहलाता है, किंतु जब वही प्रसाद शिवजी जैसे महान भक्तों द्वारा खाया जाता है तो वह महाप्रसाद कहलाता है। यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे कि जब प्रसाद भोग लगता है, भगवान को जब भोजन भोग लगता है भोग, तो फिर वो प्रसाद कहलाता है। इसलिए हमने देखा है अक्सर जहाँ मंदिरों में भगवान की विग्रह होती है वहीं पर बाहर कहीं शिवलिंग भी होता है। शिवजी को क्षेत्रपाल कहा जाता है। तो वो कौन सा भोजन खाते हैं जानते हो? कभी भी दो प्लेट्स नहीं बनाई, मतलब अलग अलग प्लेट्स नहीं बनाई जाती भगवान के और शिवजी के लिए, नहीं। पहले सारा का सारा भोजन जो है वो भगवान को अर्पित किया जाता है, और जब भगवान को अर्पित हो जाता है फिर वो भोजन मतलब शिवजी को खिलाया जाता है, और जब उस भोजन को, उस प्रसाद को शिवजी ग्रहण करते हैं तो ये प्रसाद महाप्रसाद में परिवर्तित हो जाता है। उसका नाम फिर महाप्रसाद हो जाता है। इसलिए हमको बड़ी सावधानी से इस महाप्रसाद को स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि शिवजी महान वैष्णव हैं। वैष्णवानाम यथा शंभु, और यदि किसी को महान वैष्णवों के उचिष्ट का प्रसाद खाने का अवसर मिलता है तो वो बहुत ही तीव्रता के साथ भक्ति में उन्नति करता है। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी बताते हैं शिव जी इतने महान हैं कि वे इस भौतिक संपत्ति की परवाह नहीं करते, जिसके लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं। पार्वती जी जो कि साक्षात शक्तिमयी भौतिक प्रकृति हैं, उनकी पत्नी के रूप में उनके पूर्ण नियंत्रण में है, फिर भी वे उनका उपयोग रिहायशी घर बनाने तक के लिए नहीं करते। वे बिना आश्रय के रहना पसंद करते हैं, और उनकी महान पत्नी भी उनके साथ विनीत भाव से रहने के लिए राजी रहते हैं। अब यहाँ श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं उनकी तो पत्नी पार्वती है जो साक्षात भौतिक शक्ति, भौतिक प्रकृति की शक्तिमय मतलब पूर्ण शक्ति है, तो कभी ये नहीं सोचते कि भाई हम तो इतने महान हैं, हमारी पत्नी भी इतनी शक्तिमान है तो हम ऐश्वर्यमय लग्जरियस लाइफ गुजारे, नहीं। वो तो बल्कि फिर भी क्या चाहते हैं कि मैं आनंद से समाधि में एक पत्थर के ऊपर बैठ जाते हैं कैलाश पर्वत पर और वहां पर समाधि में लगा। और ऐसा भी नहीं है कि उनकी पत्नी बोले कि भाई आप तो है ना मुझे एक घर भी बना के नहीं देते, नहीं। जैसा वो रखते हैं वैसा वो रहती हैं, क्योंकि इसी में उनको आनंद आता है। किंतु शिवजी बिना किसी भौतिक इच्छा के उन्हें अपनी सेवा में लगाए रहते हैं। वे अपनी महान पत्नी को यही उपदेश देते हैं कि सभी प्रकार की पूजाओं में विष्णु पूजा सर्वोपरि है। आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना, के शिवजी कहते हैं जितनी भी आराधनाएं हैं उनमें सबसे ज्यादा महान क्या है कि हम भगवान विष्णु की आराधना करें। तो जब पता है हमको कि हमें भगवान का ही नाम लेना है, भगवान को ही प्रसन्न करना है, फिर क्या हमको अलग अलग कार्यों के बारे में, भौतिक आनंद के बारे में सोचना चाहिए? इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं शिवजी अपनी महान पत्नी को यही उपदेश देते हैं कि सभी प्रकार की पूजाओं में विष्णु पूजा सर्व परि है, और इससे भी बढ़कर है महान भक्त की या विष्णु से संबंधित किसी भी वस्तु की पूजा, यानी भगवान की पूजा से भी बढ़कर क्या है? श्री प्रभुपाद जी बताएं जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनकी पूजा यदि हम करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं, तो हम बड़ी सरलता से भक्ति में आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम भक्तों में भी भेदभाव करना शुरू हो जाए, ये वो ऐसे भक्त हैं, वो ऐसे भक्त हैं, वो ऐसे नहीं। वो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, वो भगवान के भक्त हैं, बस उनको प्रणाम करो, उनका आदर करो और उनसे आशीर्वाद लो। लेकिन यहाँ पर
शिव जी कहते हैं कि भगवान के भक्तों का काम केवल भगवान की उनका शिव जी का हम उदाहरण देकर ये देख सकते हैं कि भक्त के अंदर कैसे गुण होने चाहिए। भक्त का पहला गुण क्या होना चाहिए? वो अकिंचन होना चाहिए। उसको अपने मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो तो बस किस तरह से मैं भगवान की कथाओं का प्रचार करूं, किस तरह से मैं भगवान की लीलाओं का प्रचार करूं, यही वास्तव में शिव जी का एकमात्र लक्ष्य है, एकमात्र उद्देश्य है। तो उसी तरह से हमको भी ऐसे ही भक्तों का संग करना चाहिए जो केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए जीते हैं, ना कि अपने लिए और अपने इंद्रिय भोग को एकत्रित करने के लिए, अपनी लाभ पूजा प्रशंसा करने के लिए। लेकिन आदर तो हमें सबका करना चाहिए, जो भी भगवान की भक्ति करते हैं। या भक्त तो किसी पशु का भी अनादर नहीं करता है, तो आदर सबका करना चाहिए। लेकिन सावधान रहना चाहिए कि हम ऐसे भक्तों की संगति करें जो कि हमें भगवान की ओर लेके जाए, ना कि अपने नाम से जोड़ दे। हरे कृष्ण। और आगे शिव जी कहते हैं, कश्यप मुनि शिव जी के गुणों को बताते हुए कहते हैं, यस्यान विद्या चरितं मनीषिणो गृणन्त्य विद्या पटलं बिभित्सवा नीरस्त साम्या तिशयोपि यत्स्वयं पेशाच चर्या मचरत गति सताम। यस्या मन जिसका, अनवध्य अनवध्य मन अनिंद्य मतलब जिसकी कोई निंदा ना कर सकता हो, आचरितम चरित्र मनीषण बड़े बड़े मुनि गृणन्ति अर्थात अनुगमन करते, यानी बड़े बड़े मुनि भी हैं वो शिवजी के चरित्र का अनुगमन करते हैं कि वो कितने अनिंद्य मतलब कितने पवित्र उनका जीवन है। तो अविद्या यानी अज्ञ, पटलम यानी पिंड, बिभित्सवा उखाड़ फेंकने के लिए इच्छुक, निरस्त किया हुआ, साम्य यानी समता, अतिशय महानता अपि उसके बावजूद, यानी कि वो तो इतने महान हैं कि अविद्या के समूह को छिन्नभिन्न करने के लिए उनके चरित्र जो है वो महान जो ऋषि हैं, महान आत्मा हैं, उनके द्वारा भी उनका अनुस्मरण किया जाता है। लेकिन फिर भी क्या, अपि मना उसके बावजूद भी, यत मना क्योंकि, स्वयं पिशाच यानी पिशाच यानी शैतान, पिशाच चर्याम कार्यकलाप अचरत यानी संपन्न किया। फिर भी वो इतने महान होते हुए भी, जो कि ऋषियों के द्वारा भी अनुस्मरण ऐसे आचरण होते हुए भी, पिशाचा चर्याम अचर गति यानी कि फिर भी वो ऐसा कार्य करते हैं जैसे पिशाच की तरह रहते हैं, गति मना गंतव्य सताम यानी भगवत भक्तों को। तो भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए कि जो दूसरे भक्त होते उनको मोक्ष प्रदान करने का अवसर प्रदान करने के लिए, ये जो महान वैष्णव होते ना, उनकी क्रिया मुद्रा, उनकी वो क्या कार्य कर रहे हैं और किस कारण से कर रहे हैं, उसको समझ पाना बहुत कठिन है। इसलिए वैष्णवों को सिर्फ प्रणाम करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। अनुवाद देखिए, यद्यपि भौतिक जगत में ना तो कोई भगवान शिव के बराबर है, ना उनसे बढ़कर है, और अविद्या के समूह को छिन्न भिन्न करने के लिए उनके अनिंद्य चरित्र का महात्माओं द्वारा अनुसरण किया जाता है, फिर भी वे सारे भगवत भक्तों को मोक्ष प्रदान करने के लिए ऐसे बने रहते हैं जैसे कोई पिशाच हो। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, शिवजी के असंस्कृत पिशाचीय गुण कभी भी
निंदनीय नहीं होते, क्योंकि वे भगवान के निष्ठावान भक्तों को सिखाते हैं कि भौतिक भोग से वैराग्य का अभ्यास कैसे किया जाए। अब यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात बता रहे हैं, भक्ति अगर कोई करता है, अगर आप किसी को भक्त मानते हो ना, तो उसके अंदर पहला गुण होना चाहिए वैराग्य। अगर वो भक्त कहलाता है या फिर अगर वो भक्ति करता है और उसके अंदर भौतिक वस्तुओं से वैराग्य नहीं आता, अभी तक अपना अहंकार नहीं जाता कि मैं किस तरह से सुखी हूँ, मैं किस तरह से आनंद हूँ, जब तक इसके अंदर से मेरा नाम नहीं निकलता। देखो शिव जी कभी नहीं चाहते मेरी, ये सोचते भले मेरी लोग निंदा करें, ये नहीं सोचे सब लोग मेरी प्रशंसा करें, सब लोग मेरा गुणगान करें, नहीं। एक भक्त की सिर्फ एक ही इच्छा होती है कि गुणगान तो मेरे कृष्ण का होना चाहिए, गुणगान तो मेरे भगवान का होना चाहिए। तो यहाँ श्री प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि शिव जी जो है वो उनका जो कार्य है वो निंदनीय नहीं है, क्योंकि वे भगवान के निष्ठावान भक्तों को सिखाते हैं कि भौतिक भोग से वैराग्य का अभ्यास कैसे किया जाए। वे महादेव कहलाए जाते हैं और इस जगत में ना तो कोई उनके तुल्य है ना उनसे बढ़कर है। वे भगवान विष्णु के लगभग तुल्य हैं, यद्यपि वे सदैव माया या दुर्गा के संग रहते हैं, किंतु वे प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया अवस्था से ऊपर है। यद्यपि वे तमोगुणी पिशाचों के अधिकारी हैं, किंतु वे ऐसी संगति से प्रभावित नहीं होते। तो वो दिखा रहे हैं कि मैं देखो माया के साथ रहता हूँ, लेकिन क्योंकि मैं सदैव भगवान की भक्ति करता हूँ इसलिए माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मैं पिशाचों के साथ रहता हूँ, मतलब पिशाचों के अधिकारी हैं, किंतु ऐसी संगति से वो प्रभावित नहीं होते। ये है वैष्णव जो किसी भी स्थिति में अपने भजन से विमुख ना हो, अपनी भक्ति से दूर ना हो, उसको कहते हैं वैष्णव। इसलिए शिव जी का सदैव आदर करना चाहिए, सदैव उनको सम्मान देना चाहिए और सदैव उनका गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान अपने गुणगान से अधिक भक्तों के गुणगान से ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और उसके अलावा श्री राम ने तो यहाँ तक कह दिया, शिव द्रोही मम भक्त कहाया, सोनर नारकी गति पाया। वो शिव जी को द्रोह कर रहा है और अपने आप को मेरा भक्त कहलाता है, तो वो निश्चित रूप से नरक में जाएगा, क्योंकि जो शुद्ध भक्तों की निंदा करते हैं, जो शिव जी जैसे महान वैष्णवों की निंदा करते हैं, उनको नरक में जाना पड़ता है। वो कभी भी उनको नाम जप का लाभ भी नहीं मिलता। इसलिए किसी भी भक्त की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। आगे कश्यप मुनि अपनी द्वितीय पत्नी को समझाते हुए कहते, श्लोक नंबर 28 में कश्यप मुनि द्वितीय से कहते हैं कि वो बहुत ही दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं जो शिव जी की महानता को नहीं समझते और उनका परिहास करते हैं। वास्तव में आज का जो जीव है वो केवल अपने ही शरीर को लालन पालन पोषित करने में ही लगा रहता है, किस तरह से अधिक सुंदर लगूं, इस शरीर को अच्छे वस्त्र आभूषण से सजाऊं। और शिव जी क्योंकि ये सब धारण नहीं करते हैं तो उनकी महानता को नहीं समझते हैं बल्कि उनका उपहास करते हैं। कश्यप मुनि कहते हैं, हसन्ति यस्या चरितं हि दुर्भगा स्वात्मन रतस्या विदुष समीहितम यैर्वस्त्रमाल्या भरणानुलेपनय श्वभोजनम स्वात् मतयोपलालितम। हसन्ति यानी हंसते हैं या परिहास करते हैं, यस्या चरितम जिनके, यस्य मना जिनका चरितम यानी कार्य ही निश्चय ही दुर्भगा, दुर्भगा मतलब बहुत ही दुर्भाग्यशाली वो लोग हैं जो उनके कार्यों को समझ नहीं पाते और उनका परिहास करते हैं। स्व आत्म यानी अपने में रतस्य संलग्न रहने वाले का विदुष ना जानने वाला
समीहितम, उसका उद्देश्य, क्योंकि वो सदैव अपने में ही मतलब अपने में ही आनंदित होते हैं, उनको बाहर की वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए वो उनका उद्देश्य नहीं समझ पाते। कौन नहीं समझ पाते? यैर वस्त्र माल्या भरण नो, यैर मतलब जो, जिसके द्वारा वस्त्र वस्त्र माल्या मालाएं आभरण यानी आभूषण, अनुलेपन अनुमन ऐसे विलासी लेपन यानी लेप से, सदैव विलासपूर्ण लग्जरियस लाइफ चाहिए जिनको, और वो किसको सजाते हैं? श्वा भोजन, श्वा कहते हैं कुत्ते को, भोजनम अर्थात भोजनम, स्व भोजनम यानी कुत्तों का भोजन, स्व आत्मतया यानी मानो स्वयं, उपलालितम लाड़ प्यार किया जाता है। अनुवाद देखिए, अभागे मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानते कि वे अपने में मस्त रहते हैं और उन पर हंसते हैं। ऐसे मूर्ख व्यक्ति अपने उस शरीर को जो कि कुत्तों द्वारा खाया जाने योग्य है, वस्त्र आभूषण माला तथा लेप से सजाने में ही लगे रहते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, शिव जी कभी भी विलासी वस्त्र माला आभूषण या लेप स्वीकार नहीं करते, किंतु जिन लोगों को शरीर को सजाने की लत लगी रहती है, वे उसे आत्मा के रूप में विलास पूर्वक बनाए रखते हैं, यद्यपि अंत में वह कुत्तों का भक्ष्य बनता है। ऐसे व्यक्ति शिव को नहीं समझ पाते, किंतु वे विलास पूर्ण भौतिक सुविधाओं के लिए उनके पास पहुंचते रहते हैं। शिव जी के भक्तों के दो वर्ग हैं। एक वर्ग नितांत भौतिकतावादी है, जो शिव जी से केवल शारीरिक सुविधाओं की याचना करता है, और दूसरा वर्ग उनसे तदाकार होना चाहता है। वे अधिकांशतया निर्विशेषवादी होते हैं और शिवोहम शिवोहम अर्थात मैं शिव हूं का उच्चारण करते हैं, जिसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद मैं शिव जी से तदाकार हो जाऊंगा। दूसरे शब्दों में सामान्यतः कर्मी तथा ज्ञानी जन शिव जी के भक्त होते हैं, किंतु वे उनके जीवन का वास्तविक उद्देश्य अच्छी तरह नहीं समझते। कभी कभी शिव जी के तथाकथित भक्त विषैले मादक द्रव्यों का उपयोग करके उनकी नकल करते हैं। एक बार शिव जी ने विषपान का सागर निगल लिया था, जिससे उनका गला नीला पड़ गया था। नकली शिवगण विषयों की लत लगाकर उनका अनुगमन करना चाहते हैं और इस तरह विनष्ट हो जाते हैं। शिव जी का असली उद्देश्य आत्मा के आत्मा अर्थात भगवान कृष्ण की सेवा करना है। वे चाहते हैं कि सारी विलास सामग्री यथा उत्तम वस्त्र मालाएं आभूषण तथा प्रसाधन वस्तुएं एकमात्र भगवान कृष्ण को प्रदान की जाएं, क्योंकि वे ही असली भोक्ता हैं। वे स्वयं ऐसी विलास सामग्री को अस्वीकार कर देते हैं, क्योंकि वे तो एकमात्र कृष्ण के निमित्त होती हैं। किंतु मूर्ख जन शिवजी की इस मंतव्य को ना जानने के कारण या तो उन पर हंसते हैं या व्यर्थ की उनकी नकल करने का प्रयास करते हैं। श्रीला प्रभुपाद की। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में बताते हैं 5.29 में, भोक्तारम यज्ञ तपस्सम, चाहे जो भी आप करते हो, वास्तव में भोक्ता केवल मैं ही हूँ। और यदि कोई जीव इतना जान लेता है कि भगवान ही भोक्ता है, तो इंद्रिय तृप्ति के विषय में उसकी सारी जो इच्छाएं हैं वो समाप्त होने लगती हैं, क्योंकि वो जानता है कि इंद्रिय तृप्ति करके मुझे कभी शांति उत्पन्न नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो सबसे ज्यादा उत्तम और सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो समस्त भौतिक भोगों की सामग्री जो है उसका भोक्ता भगवान को मानता है और स्वयं भगवान को प्रसन्न करके प्रसन्न रहने की चेष्टा करता है, वही शांति। भगवान कहते हैं, स शांति मापनोति न काम कामी।
वही शांति प्राप्त कर सकता है, वो नहीं जो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करता है या भौतिक आनंद प्राप्त करके खुश होना चाहता है। इसीलिए शिव जी जो है वो हमें सिखाते हैं कि किस तरह से जीव अपने जीवन में भगवान को प्रसन्न करके आनंदित हो सकता है। लेकिन शिव जी के जो भक्त हैं, जो तथाकथित यहाँ श्री प्रभुपाद जी ने दो प्रकार के बताए, एक तो बेवकूफ है, वो समझते हैं शिव जी जो है वो सिर्फ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उनकी पूजा करो, भक्ति करो, जल्दी से धनवान हो जाओ या जल्दी से माला माल हो जाओ। और कुछ तो होते हैं बस शिवो हम करके शिव जी में तदाकर होना चाहते हैं। लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो क्या है, आत्मा की आत्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करके जीवन को आनंदित करना, वो ये लोग नहीं समझ पाते, इसलिए दुर्भाग्यशाली है। लेकिन जो बुद्धिमान है वो क्या करते हैं, तो यहाँ पर बताते हैं कश्यप मुनि बता रहे हैं, मैत्रेय ऋषि विदुर जी से कहते हैं, ब्रह्मादयो यत् कृतसे तु पाला यत् कारणं विश्वमिदं च माया, आज्ञाकरी यस्य पिशाचचर्या आहो विभुनश चरितं विडंबनम्। ब्रह्मादयो यानी ब्रह्मा आदि जो देवता गण हैं, जो ब्रह्मा जैसे बुद्धिमान देवता हैं, वो यत कृत सेतुपाला, यत माने जिसका, कृत यानी कार्यकलाप, सेतु यानी धार्मिक अनुष्ठान, पाला यानी पालने वाले, ब्रह्मा आदि जो शुद्ध देवता हैं, वो तो भगवान महादेव के ही अनुसरण करते हैं, उनके द्वारा जो अपनाए गए धार्मिक अनुष्ठान है उनका ही पालन करते हैं। यत कारणम विश्वमिदम च माया, यत मन जो, कारणम यानी उद्गम, विश्वम यानी ब्रह्मांड का, इदम इस च भी माया यानी भौतिक माया, ये भौतिक शक्ति जो ब्रह्मांड है वही उसके शिवजी ही उसके कारण स्वरूप हैं। आज्ञा करी यस्य पिशाचचर्या, आज्ञा करी यानी आदेश पूरा करने वाला, यस्य जिसका, पिशाच यानी शैतानवचर्या, अहो विभूमन, अहो मन हे प्रभु, विभूमन यानी महान, चरितम चरित्र विडंबनम, केवल विडंबना। मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, वे उस भौतिक शक्ति के नियंता हैं जो भौतिक जगत का सृजन करती है। इस भौतिक जगत की जो प्रकृति है, जो माया है, उसके नियंता हैं, वे महान हैं। अतएव अहो विभुवनिश्चरितम विडंबना, अतएव उनके पिशाचवत गुण मात्र विडंबना है, मतलब वो तो बस ब्रह्मा, मतलब ब्रह्मा आदि देवता भी मानते हैं कि ये तो केवल एक हमको भरमाने के लिए है कि वो इस तरह से कार्य कर रहे हैं, वरना जो सृजन शक्ति, भौतिक शक्ति की जो सृजन करती है उनकी नियंता है वो, और वो परम वैष्णव है, तो वो उनका जो कार्य है वैष्णव मुद्रा क्रिया वो कोई जान नहीं सकता है, इसलिए उनके उनके द्वारा जो दिए गए अनुष्ठान है कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपना सब कुछ त्याग देना, उसी का ही अनुसरण करना चाहिए। बाकी उनकी तरह नकल जो करते हैं, जो नशा करते हैं, जो गलत कार्य करते हैं, वो तो बेवकूफ हैं। अनुवाद देखिए, ब्रह्मा जैसे देवता भी उनके द्वारा अपनाए जाने वाले धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करते हैं, वे उस भौतिक शक्ति के नियंता हैं जो भौतिक जगत का सृजन करती है, वे महान हैं। अतएव उनके पिशाचवत गुण मात्र विडंबना है। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, शिव जी दुर्गा के पति हैं, अर्थात भौतिक शक्ति के नियंता हैं। दुर्गा साक्षात भौतिक शक्ति है और उनके पति होने के कारण शिव जी भौतिक शक्ति के नियंता हैं। वे तमोगुण के अवतार भी हैं और भगवान का प्रतिनिधित्व करने वाले तीन देवों में से एक हैं। भगवान के प्रतिनिधि होने से शिव जी उनसे अभिन्न हैं, वे अति महान हैं और उनके द्वारा समस्त भौतिक भोग का परित्याग इसका आदर्श उदाहरण है कि मनुष्य को किस तरह भौतिक रूप से अनासक्त रहना चाहिए। अतएव मनुष्य को उनके पदचिन्हों का अनुसरण करना चाहिए और पदार्थ से अनासक्त रहना चाहिए। उसे गरल पान जैसे उनके असामान्य कार्यों की नकल नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ तक कश्यप मुनि ने बहुत समझाया अदिति को कि देखो शिव जी कितने महान हैं, वो अभी आएंगे तो हम ये सब गलत कार्य करेंगे संध्या के समय, तो वो तो मेरे छोटे भाई की तरह है, तो कितना उनको बुरा लगेगा। तो आप अभी थोड़ी देर के लिए सब्र करो, संध्या का समय समाप्त हो जाए तो फिर मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। लेकिन इतना समझाने के बाद कि उसके साथ भूत प्रेत होते हैं, वो गर्भ में डाल देते हैं, फिर महानता शिव जी के बताने के बाद, ताकि उसके मन से जो ये काम इच्छा का जो तीव्र प्रभाव है वो समाप्त हो जाए, लेकिन फिर भी एक बार ये शत्रु आक्रमण कर लेता है तो फिर उसको शिक्षा असर नहीं करती। इसलिए मैत्रेय मुनि श्लोक नंबर 30 में कहते हैं, मैत्रेय उवाच सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन मथितेन्द्रिया जग्राहवासो ब्रह्मर्षे वृषलीव गतत्रपा। मैत्रेय उवाच अर्थात मैत्रेय मुनि विदुर जी से कहते हैं, सैवं समन वह, एवं मन इस प्रकार, संविदिते अर्थात सूचित किए जाने पर, इतना यानी कि समझाया उन्होंने भर्तरा अपने पति के द्वारा मनमथ, लेकिन फिर भी क्या हुआ, मनमथ यानी कामदेव द्वारा उन्मथिता विवश की गई थी। कामदेव ने जब उसको विवश कर दिया, कामातुराणाम न भय न लज्जा। आपको लगे ना जब कि किसी को कामदेव ने विवश कर दिया, अपनी मानों से घायल कर दिया है, फिर उससे कोई उम्मीद नहीं रखी जा सकती, फिर उसको ना तो किसी का भय रहता है और ना ही कोई शर्म रहती है। तो यहाँ पर साफ साफ बताया जा रहा है कि अपने पति द्वारा इतना समझाया, लेकिन मन मथ उन्मथित इंद्रिया, उन्मथिता मतलब विशेष विवश की गई इंद्रिया यानी इंद्रियों के द्वारा, और जग्राह वासो, जग्राह मन उन्होंने फिर भी दिति ने पकड़ लिया वास मन वस्त्र को ब्रह्मर्षि उस महान ब्रह्म ऋषि का, अपने पति का वस्त्र पकड़ लिया। किस तरह से, वृषली, वृषली यानी वैश्या इव सदृश गतत्रपा, गतत्रपा मतलब लज्जा रहित। मैत्रेय ने कहा, इस तरह दिति अपने पति द्वारा सूचित की गई, किंतु वह संभोग तुष्टि हेतु कामदेव द्वारा विवश कर दी गई थी। उसने उस महान ब्रह्म ऋषि का वस्त्र पकड़ लिया जिस तरह एक निर्लज वेश्या करती है। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, एक विवाहित पत्नी तथा वेश्या में यही अंतर है कि एक शास्त्रों के विधि विधानों द्वारा यौन जीवन में नियंत्रित रहती है, जबकि दूसरी अनियंत्रित और एकमात्र प्रबल कामवासना द्वारा संचालित होती है। यद्यपि महर्षि कश्यप अति प्रबुद्ध थे, किंतु वे अपनी वेश्या पत्नी के शिकार हो गए थे। भौतिक शक्ति इतनी प्रबल होती है। तो यहाँ श्रील प्रभुपाद जी समझा रहे हैं कि विवाहित जीवन का उद्देश्य केवल जानवरों की तरह संभोग करना नहीं होता है, विवाहित जीवन का उद्देश्य होता है विधि विधानों का पालन करना, कि किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। विवाहित जीवन का यहाँ तक कह दिया शास्त्र ने कि पति न पिता न सस्या जननी न सस्या, आपको पिता बनने का अधिकार नहीं माता बनने का अधिकार नहीं। न मोचयेत यत् समुपैति मृत्यु। यदि आप इस बात की गारंटी नहीं रहते हो कि मैं भरपूर प्रयास करूंगा अपनी संतान को जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाने के लिए, मैं अपने संतान को धार्मिक अनुष्ठानों के लिए प्रेरित करूंगा, मैं अपनी संतान को भगवत भक्त बनाऊंगा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जब एक आत्मा ना जाने कितने जन्मों से भटकती भटकती एक माता पिता का आश्रय लेकर माता के गर्भ में जब आना स्वीकार करती है या भगवान उसे भेजते हैं, तो ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माता पिता के ऊपर कि उसे दोबारा कुत्ते बिल्लियों के शरीर में ना जाना पड़े, वो ऐसी शिक्षा दे उसको। तो उसके लिए तभी संभव है जब माता पिता स्वयं धर्म का अनुष्ठान करेंगे, धर्म का पालन करेंगे। इसलिए विवाहित जीवन में बहुत सारे विधि विधान होते हैं कि किस दिन क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, ताकि उनकी संतान जो है वो सत्मार्ग पर चल सके। आप सबका बहुत बहुत आभार। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा, ताकि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।